पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सौवसाऊणं, णमियूणणन्तजिणं, अनन्तनाणेन दिट्ठसौवट्ठम्, कम्मपदेशविहत्तिं वोक्षामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक में जो प्रदेश विभक्ति अर्थाधिकार चल रहा है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 112 पर आ गए हैं। 112। अब यहाँ क्रोध संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म किसके होता है, उसकी बात चल रही है। तो सूत्र में बताया था कि जब जीव पुरुष वेद और 6 नौकषायों के द्रव्य को शपक श्रेणी में क्रोध संज्वलन में प्रक्षिप्त करता है, यानी उस रूप उसका संक्रमण होता है, तब उसके वो क्रोध संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है।
वही चीज जो पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म,
हाँ वही, यानी कौन सा वही, जो पुरुष वेद का जिसके उत्कृष्ट है, उसके लिए जो कंडीशंस बताई है, गुणित कर्मांशिक था वो, बादरे केंद्रीय में घुमा आदि आदि बातें। अब यहाँ 112 अपन जो बीच में शंका लिखी है वहां से पढ़ेंगे कि सातवें नरक में क्रोध संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके, क्योंकि गुणित कर्मांशिक है, सभी कर्मों का उत्कृष्ट संचय होता है, तो वहां करके, वहां से निकलकर ईशान आदि देवों में तीनों वेदों का प्रदेश संचय करते समय संज्वलन कषाय का बहुत द्रव्य क्षय हो जाता है, क्योंकि वहां बहुत संक्लेश के न होने से बहुत उत्कर्षण भी नहीं होता। ये शंकाकार की शंका है। तथा सम्यक्त्व को प्राप्त करते समय अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा गुणश्रेणी रूप से कर्म स्कंधों का उद्ध कर मर लगाए उद्ध के साथ उन्न करना, कर्म स्कंधों का क्षय भी देखा जाता है। क्योंकि हमने देखा था वेद के प्रकरण में कि पहले ईशान स्वर्ग में, फिर क्रम से अपने क्रमानुसार असंख्यात वर्षायुष वाले में, और फिर बाद में सम्यक तो प्राप्त करा के फिर सौधर्म स्वर्ग में ले गए थे। तो जब सम्यक तो प्राप्त होता है तो गुण श्रेणी वगैरह होती है अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में, तो अनेक कर्म स्कंधों का वहां पर क्षय हो जाता है। अतः इसलिए उसका क्या कहना है शंकाकार का, कि पहले तीनों वेदों का संचय करके और पीछे सातवें नरक में संज्वलन कषाय का उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके मनुष्यों में उत्पन्न कराकर शपक श्रेणी पर चढ़ाकर क्रोध संज्वलन का उत्कृष्ट स्वामीपना कहना चाहिए, ये उसका कहना है। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ईशानादिक में भ्रमण कराने पर भी वह दोष बना ही रहेगा। पहले जाता है तो वहां भी वही बात होगी ना, बाद में जाओ और पहले जाओ, वहां जो उत्कर्षण नहीं होता है और बहुत सारा निकल जाता है वो तो वहां भी हो जाएगा। अतः सर्वत्र गुणित कर्मांश के काल के अंदर ही गुणित कर्मांशपना उसका बना रहता है, उसी काल में नव नौ कषायों के, ये कषायों के बराबर दिख रहे हैं, कषारयों के हुआ है, कषायों के साथ क्या कहते गुणित कर्मांश काल के अंदर ही नौ नौ कषायों के साथ क्रोध संज्वलन के प्रदेश समूह की रक्षा करनी चाहिए। यतः सूत्र में यतः का अर्थ होता है क्योंकि सूत्र में वही जीव ऐसा निर्देश अन्यथा बन नहीं सकता। वही जीव खास बताया है, अन्य कोई जीव आता है उसकी बात नहीं है, इसलिए वही जीव में वही कंडीशन डाली थी। पहले गुणित कर्मांशिक था, फिर नरक से निकलकर अपने क्रम से ईशान में गया, फिर वो असंख्यात वर्षायुष्क में गया, आदि बातें जो हमने देखी थी, वही जीव लेना है यहाँ पर।
हमने स्त्रीवेद का उत्कृष्ट के लिए ईशान में नहीं भेजा था, वहाँ से गुणित कर्मांशिक वाले को सीधा असंख्यात वर्ष के आयु वाले में भेजा था, ऐसे ही लिया था ना।
स्त्रीवेद का जो उत्कृष्ट बताया है उसमें यानी बारंबार वो असंख्यात वर्षायुष्क वाले में जन्मा है ऐसा
हाँ।
वहाँ लिया
हाँ, तो हमने उधर ईशान में नहीं भेजा था, जो उत्कृष्ट प्रदेश संचय जो नपुंसक वेद का करता है
हाँ।
उसको ईशान में भेजा था
ईशान के लिए हाँ। नपुंसक वेद
तो
के लिए
भेजने की जरूरत नहीं है, सीधा श्रीवेद में जाके पीछे मनुष्य में आके उसको सपक श्रेणी में चढ़ाना है।
वो तो हमने वेदों के वेदों में तो हमने उसकी चर्चा की थी, क्योंकि पुरुष वेद के उत्कृष्ट के लिए उसकी आवश्यकता थी।
श्रीवेद का उत्कृष्ट की आवश्यकता
नहीं, दोनों की उत्कृष्ट की आवश्यकता थी पुरुष वेद के उत्कृष्ट के लिए। प्रश्न वही था, उसको संक्रमित ही करना है तो अलग अलग श्रीवेद को उत्कृष्ट कराओ, नपुंसक वेद को उत्कृष्ट कराओ, बाद में संक्रमित करो, इसकी क्या आवश्यकता थी। ये तो लंबी चौड़ी तो वही प्रश्न था ना, तो उसका तो वहां पर हो गया अपना। कल वो लंबी चौड़ी शंका उसी के लिए पूछी थी और उसका समाधान भी उन्होंने किया था और फिर उस कह दिया कि क्षपक श्रेणी में ही उत्कृष्ट कहेंगे और उसके लिए वो पहले नपुंसक वेद का भी उत्कृष्ट और स्त्रीवेद का ही उत्कृष्ट करके इसमें आया है। वो तो बात हो चुकी, अब वही जीव यानी उसके लिए जो कंडीशन है ये यहाँ भी लागू हो जाएगी, क्योंकि जीव तो वही लिया है। यहाँ 112 पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन, यतः सूत्र में वही जीव ऐसा निर्देश अन्यथा बन नहीं सकता, अतः पहले कहे हुए क्रम के अनुसार ही लगाया। यानी अपने हमें लगना अलग बात है, संज्वलन क्रोध का उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए। ईशानादिक में आय से व्यय बहुत ही है ऐसा कोई नियम नहीं है। ये शंकाकार ने शंका निकाली थी कि वहाँ ज्यादा व्यय होगा, परंतु ऐसा नियम नहीं, क्योंकि स्वामित्व की स्थिति से नीचे की स्थिति के सब प्रदेशों को लेकर उनको विवक्षित स्थिति से ऊपर स्थापित करके ईशानादिक में स्वामित्व की स्थिति से नीचे की स्थिति के सब प्रदेशों को लेकर उनको विवक्षित स्थिति से ऊपर स्थापित करके ईशानादिक में स्तोक गोपुच्छ की निर्जरा होने से, स्तोक गोपुच्छ ने वो कम वहाँ निर्जरा कम हो जाएगी, क्योंकि परमाणुओं का वहाँ उत्कर्षण हुआ है और ऊपर की स्थिति में चले गए हैं। तीनों ही वेदों का संचय करते हुए गुणित कर्मांश वाले जीव में आय से व्यय थोड़ा पाया जाता है। इसकी भी हमने कर देखो, क्योंकि स्वामित्व की स्थिति से नीचे की स्थिति के वहाँ जो उसकी स्थिति है, पहले कर्म स्थिति के अंदर की बात चल रही है, अभी नीचे के स्थिति के परमाणुओं को ऊपर स्थापित किया उसने, क्योंकि बाद में जो बंधे हुए हैं स्वामित्व की स्थिति जो पहले बिता कर आया है, अभी उसकी तो स्थिति कम रही है। कर्म स्थिति के काल की बात चल रही है ना, पहले एकेंद्रिय में बिताया, फिर त्रस में बिताया, तो वो स्वामित्व की जो स्थिति है उसके बाद भी कर्म परमाणु बनते रहे हैं, तो उनको ऊपर जितनी उनकी शक्ति स्थिति है वहां तक तो ऊपर जा सकते हैं, तो वो स्थिति के ऊपर उनको उत्कर्षित करके स्थापित किया है, तो उसके नीचे यानी वहां उत्कर्षण के द्वारा ऊपर स्थापित किए हैं, तो कम प्रदेशों की निर्जरा होगी। इतनी बात यहां लेनी है, इसलिए चौथे लाइन में क्या लिखा है, गुणित कर्मांश वाले जीव में आय से वे थोड़ा पाया जाता है, तभी तो उनका संचय अधिक है। दूसरे, यद्यपि गुणित कर्मांश की विधि के साथ ईशानादिक में तीनों वेदों की पूर्ति करने वाले जीव के क्रोध संज्वलन और छह नौकषायों का सातवें नरक में जो लाभ होता है उसकी अपेक्षा थोड़ा लाभ होता है। क्या कहते हैं, जहां सातवें नरक वाले के क्रोध संज्वलन का जितना संचय उत्कृष्ट प्रदेश है उसकी अपेक्षा यहां पर थोड़ा होगा, कम होगा, फिर भी निकाचना आदि के द्वारा तीनों वेदों में से जो लाभ प्राप्त होता है वह उस क्रोध संज्वलन के लाभ की अपेक्षा से बहुत है, क्योंकि बाद में ये सारे के सारे वेद के परमाणु क्रोध रूप होने वाले हैं, यहां निकाचना आदि के द्वारा इनका द्रव्य अधिक पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा ये वेदों के परमाणु का उत्कर्षण होके निकाचना निधत्ति वगैरह रूप बन जाते हैं, तो उसका व्यय कम होगा और उसके ऊपर के स्थिति में अधिक काल तक रहेंगे ये परमाणु। यदि ऐसा न होता तो सूत्र में वही जीव ऐसा निर्देश नहीं हो सकता था, इसलिए पहले कहा हुआ अर्थ ही ठीक है ऐसा जानना चाहिए। इतना विशेष है कि क्रोध संज्वलन के प्रदेश समूह के उत्कृष्ट स्वामित्व का कथन करते हुए मान आदि कषाय के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ाना चाहिए। क्या कहते हैं, जब क्रोध संज्वलन का उत्कृष्ट स्वामी कह रहे हैं तो मान माया लोभ आदि से क्षपक श्रेणी पर चढ़ाना चाहिए,
क्योंकि एक
निषेक का नहीं पड़ेगा, पूरे अंतर्मूर्त तक क्रोध का उदय चलेगा।
नहीं, मान के उदय के साथ चढ़ता है।
देखो, जिससे प्रथम स्थिति के प्रदेश समूह की निर्जरा से रक्षा हो सके। प्रथम स्थिति में किसके, देखो जब जिसका उदय है उसकी प्रथम स्थिति में अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक आते हैं।
पर वहाँ पे भी जो निषेक उदय में आ रहा है, मान का उदय है सपोज, तो मान के उदय के सब साथ एक एक निषेक तो उसका भी गलेगा।
नहीं गलेगा, वो ऊपर पड़े रहते, द्वितीय स्थिति में पड़े रहते, और जिनका उदय रूप है उन्हीं की रचना नीचे होती है, उदय रूप कषाय की ही नीचे रचना होती है, और बाद में ऊपर पड़े पड़े उसका संक्रमण हो जाएगा, अन्यत्र एक एक निषेक नीचे आता है गलता है। वैसे यहाँ पोजीशन
की बात है ना,
क्षपक श्रेणी की बात है, जब बीच में गैप तैयार होती है।
हाँ।
अन्यत्र अलग प्रकरण था।
हाँ।
अभी गैप तैयार होती है, अंतर जिसमें पड़ता है, और अंतर के ऊपर सारे परमाणु पड़े हैं। अब क्रोध का उदय होता तो क्रोध के नीचे रचना होती, पहले जो पहली स्थिति है उसमें क्रोध के निषेकों की रचना हो जाती, जिसका उदय है उसी की रचना होती है वहां पर, इसलिए प्रथम स्थिति में वो गल न जाए इसलिए मान का उदय लिया है, तो अंतर्मूर्त तक मान का ही उदय चलेगा। यहाँ पर
कृष्टि तो बारो बनती है,
उत्कृष्ट स्थिति के लिए मान आदि मान माया लोग कोई किसी के उदय के साथ चढ़े हो, क्रोध को नहीं लेना है,
क्रोध के उदय के साथ नहीं चढ़े।
क्रोध का उदय होगा तो क्रोध की निर्जरा ज्यादा होगी, अन्यत्र बात अलग। हाँ, लोभ से भी चले
भी।
जिसका उदय है उसी के नीचे वो सारी रचना होती है। अभी ये तो संदृष्टि में भी हमने देखा था, और देखो ऊपर तो सारे परमाणु पड़े ना,
हाँ,
और नीचे जो बारंबार रचना होती है, 12 संग्रह सृष्टि के वगैरह जो कुछ रचना होगी, तो वो नीचे उसका जिसका उदय है उसके इतने निषेक पाए जाएंगे, और जिसका उदय नहीं है उसके थोड़े ही निषेक होंगे।
अच्छा, तो आकर्षण भी, हाँ,
तो ये सारे निर्जरा रूप हो जा रहे हैं। आपको याद होगा तो संदृष्टि में हर एक के उदय के साथ अलग अलग कैसा पिक्चर बनता है हमने देखा था। अभी जब इसकी क्षपणा की बारी आएगी तब इसमें क्लैरिटी होगी, यहाँ भी आएगी बात आगे चलकर, उपशमन क्षपणा वगैरह सभी प्रकरण आने वाले हैं। यहाँ क्या क्या क्रोध संज्वलन के प्रदेश समूह के उत्कृष्ट स्वामित्व का कथन करते हुए मान आदि लिखा ना, आदि मान माया लोभ आदि कषाय के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ाना चाहिए। क्यों? जिससे नहीं, उस कारण क्या होगा? प्रथम स्थिति के प्रदेश समूह की निर्जरा से रक्षा हो सके, यानी प्रथम स्थिति में वो प्रदेश समूह की निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि वहां क्रोध के परमाणु तो है, उदयमान का चल रहा है। अब वहीं पर जो नौकषाय और पुरुषवेद है उसके परमाणु क्रोध रूप परिणमित हो रहे हैं, परंतु उदयमान का होने से वो निर्जरा बच गई, क्रोध की उदय से निर्जरा नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा कोई नहीं, उसको छोड़कर अन्य माया के लिए फिर लोभ की बात करेंगे। उसमें कोई विरोध नहीं है। अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं। ऐसे वो कोधो जाधे माणे पक्षितो ताधे मानस उपकसयम पदेश संतकम्मम। वही जीव जब क्रोध को मान में प्रक्षिप्त करता है तब मान का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। इस सूत्र का अर्थ सुगम है। अभी इसमें क्या है, मान के उदय से चढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो तो उसका तो पहले ही बहुत सारी निर्जरा हो जाएगी, तो उसके लिए माया या लोभ के उदय से चढ़ेगा, और जो क्रोध के उत्कृष्ट वाला है वो मान में ट्रांसफर हो जाएगा। इतना विशेष है कि माया या लोभ कषाय के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ाना चाहिए। शायद कहा जाए कि ऐसा होने से वही जीव इस वचन के साथ विरोध आता है, सो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तेनेव का अर्थ है जिसने क्रोध संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश संचय किया है वह जीव, अतः उसका अर्थ मान कषाय के उदय वाला जीव नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? वही जीव लिया ना क्रोध, तो क्रोध वाला जो वही जीव है, क्रोध का उत्कृष्ट वाला, वो मान माया लोभ का उत्कृष्ट उसके उदय से चढ़ सकता है, परंतु अभी हमें क्रोध के उत्कृष्ट के बाद मान का जब उत्कृष्ट चाहिए तो शुरू से ही माया के उदय से चढ़ने वाला जीव लेना चाहिए। तो माया के उदय के सही चढ़ने वाला क्रोध का उत्कृष्ट हो सकता है, और वही जीव जब मान में संक्रमित होगा, यानी शुरू से उसने माया या लोभ के उदय से श्रेणी चढ़ी है। तथा मान कषाय के उदय से ही क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के क्रोध का उत्कृष्ट संचय होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि माया और लोभ कषाय के उदय से भी पहले मान आदि कहा था ना, चढ़ने वाले जीव के उत्कृष्ट संचय होने में कोई विरोध नहीं है। अब ऐसे ही आगे भी फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे व मानो जाधे मायाए पक्षितो ताधे माया संजलनस्य उपकसयम् पदेश संतकम्मम्। वही जीव जब मान को माया संज्वलन में प्रक्षिप्त करता है तब माया संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। अब यहाँ कौन सा जीव लेना चाहिए? लोभ से चढ़ने वाले के इतना विशेष है। लोभ कषाय के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म कहना चाहिए। किसका? माया का। वही जीव जब माया को लोभ संज्वलन में प्रक्षित करता है तब लोभ संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। ऊपर रह गया। ऐसे व माया जाधे लोभ संजलने पक्षिता ताधे लोभ संजलन से उपकस्यम पदेश संतकम्मम। अभी पढ़ा था ना, वही जीव पक्षित पक्षित्तो ऊपर आया ना, पक्षित्तो वही जीव जब माया को लोभ संज्वलन में प्रक्षिप्त करता है यानी संक्रमित करता है तब लोभ संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। अभी यहाँ क्या लेना, इतना विशेष है कि लोभ संज्वलन का उत्कृष्ट संचय प्राप्त करने के लिए मान कषाय के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोभ की गोपुच्छाओं को आवली के असंख्यात भाग से भाजित करके लब्ध एक भाग प्रमाण मान की गोपुच्छाएं लोभ की गोपुच्छाओं से कम पाई जाती हैं। इस प्रकार चुन्नी सूत्रों का कथन करके अब उच्चारणा को कहते हैं। जितने देखो लोभ के उदय से जितनी गोपुच्छाएं बनेगी प्रथम स्थिति में उससे मान के उदय से चढ़ने वाले की गोपुच्छाएं थोड़ी कम पाई जाती है, असंख्यात भाग कम पाई जाती है, इसलिए वहां पर उसकी निर्जरा भी कम हो जाएगी। इतना ही उनमें लेना है। अभी क्रोध को क्यों छोड़ा, माया को क्यों छोड़ा?
हाँ, माया को क्यों छोड़ा? हाँ। क्रोध को तो मरा हुआ।
माया को इसलिए छोड़ा कि माया का उसमें उत्कृष्ट नहीं हो सकता है। माया का उत्कृष्ट वाला लेना है ना, माया का उत्कृष्ट वाला लेना है। फिर भी आप कहेंगे वो मान का उत्कृष्ट वाला लेंगे तो ही माया का उत्कृष्ट होगा। फिर भी उसमें अभी लोभ के लिए उसके बाद वाला कुछ है ही नहीं है, लोभ रूप का ही रहेगा, इसलिए दोनों में चारों में जो कोई छोटा है उसको लिया है। यही बात अभी उच्चारणाचार्य कहेंगे जो हमने चुन्नी सूत्र के द्वारा उत्कृष्ट के बारे में देखा था। जैसे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट किसको होता है, वो गुणित कर्मांश वाले के सातवें नरक के अंत समय में। यही बात अभी उच्चारणा में बताएंगे। स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मिथ्यात्व 12 कषाय और 6 नौ कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, ये सबको एक साथ लिया, वह अलग अलग सूत्रों में बताया था। जो बादर पृथ्वी कायिकों में कुछ अधिक 2000 सागर कम कर्मस्थिति काल तक रहा, कितना रहा? कर्मस्थिति माइनस
70 कोड़ा कोड़ी माइनस
साधिक 2000 सागर। और अंत में जाकर पहले कही हुई विधि के अनुसार 33 सागर की स्थिति वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, यानी त्रसों में भी वो पर्याप्तों में बहुत रहा वगैरह वगैरह, योग ज्यादा रहा, संक्लेश परिणाम ज्यादा हुए, सभी कंडीशंस वहां लगाना। उस नारकी के अंतिम समय में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। किसी उच्चारणा में नारकी के अंतिम समय से नीचे अंतर्मूर्त काल उतर कर उत्कृष्ट स्वामित्व सामित्व हुआ है, स्वामित्व दिया है, क्योंकि आयुबंध के काल में मुनि का जो क्षय होता है उससे आयुबंध के पश्चात के विश्राम काल में होने वाला संचय बहुत नहीं होता है। यानी किसी का कहना है वो आयुबंध के काल के पहले वाला
लेना,
वहां का समय लेना,
आयु के अंतिम, आयुबंध के अंतिम समय,
आयुबंध के पहले
नहीं, आयुबंध के अंतिम तो विश्राम करता है पीछे पश्चात, तो विश्राम के पहले आयुबंध के,
आयुबंध के काल में क्या होता है,
ज्यादा
मुनि का क्षय ज्यादा होता है,
तो अंतर्मुख पहले लेना,
तो उसके भी पहले लेना। उन्होंने क्या कहा, आयुबंध के काल में क्या हो रहा है, क्षय ज्यादा है, इसलिए उसके बाद जो संचय होगा
वो कम है।
जितना क्षय आयुबंध के काल में हुआ है उससे ज्यादा संचय बाद में होगा
तो
ही वो अंतिम समय में घटित कर सकते हैं। इसलिए वहां क्षय होने के पूर्व की बात है, तो लास्ट वाला विश्राम वाला समय अंतर्मुहूर्त और आयुबंध का अंतर्मुहूर्त, इनको छोड़कर जो, यानी इनको मिला हुआ जो अंतर्मुहूर्त है उतने पहले उत्कृष्ट संचय लेना चाहिए, ऐसा किसी किसी का कहना है, सर्वत्र इसको नहीं माना है। ये हो गए मिथ्यात्व 12 कषाय और
6
कषाय। सम्यक मिथ्यात्व की उत्थान करना, मिथ्या हुआ है, सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, जो गुणित कर्मांश वाला जीव सातवें नरक से, नरक के सेवा, नरक से निकलकर सबसे कम काल में दर्शन मोह का क्षपक हुआ। हमने देखा 2-3 बहुत इंच करके मनुष्य में आया क्षपणा की, वह जब मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में प्रक्षिप्त कर देता है तब सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। ये तो बहुत विस्तार से हमने चूर्णी सूत्र के द्वारा देखा था। वही जीव लिया जब सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में प्रक्षिप्त करता है तो उसके सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। नपुंसक नपुंसक वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, याद है ना, हमने वो ईशान वाले को देखा था, जो गुणित कर्मांश वाला जीव ईशान स्वर्ग में जाकर जब देव पर्याय के अंतिम समय में स्थित होता है तब उसके नपुंसक वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। स्त्री वेद की उत्कृष्ट विभक्ति किसके होती है, जो गुणित कर्मांश वाला जीव असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य तिर्यंचों में उत्पन्न होकर पल्ले के असंख्यात विभाग काल के द्वारा स्त्रीवेद का संचय करता है, उसके स्त्रीवेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। ये अनेक बार उसमें जन्म लिया, उसने ये लिया था। पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, अब इसमें तो दोनों जीव लिए, जो गुणित कर्मांश वाला जीव ईशान स्वर्ग के देवों में उत्पन्न होकर नपुसक वेद को पूरता है, फिर असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य तिर्यंचों में उत्पन्न होकर पल्ले के असंख्यात वे भाग काल के द्वारा स्त्रीवेद को पूरता है, फिर सम्यक्त को प्राप्त करके पल्ले की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर वहां पुरुष वेद को पूर्ण करके च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर सबसे लघु काल के द्वारा क्षपक श्रेणी पर चढ़कर नपुसक वेद को पुरुष वेद में प्रक्षिप्त करके जब स्त्रीवेद का पुरुष वेद में क्षेपण करता है तब पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। ये तो हमने इसको भी विस्तार से देखा था, ये शॉर्ट में वही कथन है ना, दोनों ही आचार्य वही बात तो कहेंगे। क्रोध संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, जब पुरुष वेद के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म को क्रोध संज्वलन में प्रक्षिप्त कर देता है। हमने देखा ना, वही जीव पुरुष वेद और 6 कषायों का द्रव्य प्रक्षिप्त करता है तब क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। मान का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म किसके होता है, यहाँ तो शॉर्ट में बताया, वहां एक कंडीशन और डाली, मान माया और लोभ के साथ चढ़ना चाहिए श्रेणी। जब क्रोध संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म मान में प्रक्षिप्त कर देता है तब मान का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। माया संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, जब मान का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म माया में प्रक्षिप्त कर देता है तब माया की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। लोभ संज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म किसके होता है? जब उत्कृष्ट माया संज्वलन के प्रदेश समूह को लोभ में प्रक्षिप्त कर देता है, तब लोभ का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। ये इसको तो हमने और विस्तार से पहले देखा था, उसी की बात यहाँ आ गई। ये तो हो गया ओग से उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म। अब आदेश से चलेगा। आदेश से नरक गति में नारकियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 6-9 कषायों की 16 कषाय लिए यहाँ पर। उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? जो गुणित कर्मांश के लक्षण के साथ आकर सातवें नरक में 33 सागर की आयु लेकर उत्पन्न हुआ, उस अंतिम समयवर्ती नारकी के अथवा चरिम, दो उपदेश है ना, तो चरिम समय से अंतर्मूर्त नीचे उतर कर स्थित नारकी के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। देखो 16 कषाय यहाँ क्यों लिया, अन्यत्र 12 कषाय लिए थे। हाँ, तो क्षपण श्रेणी में जो क्रोध संज्वलन मान संज्वलन आदि का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर लिया है। नारकियों में तो वो होता नहीं क्षपणा, तो नारकियों में तो यही बात लेनी है। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? तो सातवें नरक के जिस नारकी के अंतर्मूर्त के बाद मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का हमने देखा था ना, नारकी के अंतिम समय में होता है। तो ऐसा जो जिसका मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म एक अंतर्मूर्त के बाद होगा, वह विपरीत जाकर, यानी अभी उसको उल्टा घुमाना, सम्यक्त्व को प्राप्त कर गुण संक्रम के उत्कृष्ट काल के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व का संचय कर दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियों में से एक का उदय होगा, किंतु ऐसा न होकर स्थित हुए उपशम सम्यक दृष्टि के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। क्या कहना चाहते, ख्याल में आई बात? देखो गुणित कर्मांश वाला नारकी जो है उसके नरक के अंतिम समय में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। सातवें नरक का नारकी तो सम्यक्त्व में तो कभी मरेगा ही नहीं, मिथ्यात्व में ही मरता है। परंतु ऐसा है ना कि एक अंतर्मूर्त पहले यानी 33 सागर के अंत की ओर उसको सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है, तो वहाँ उसको औषमिक सम्यक्त्व प्राप्त कराना, जितना देरी से उसको हो सकता है उतना, यानी मिथ्यात्व को यानी अंतिम समय से एक अंतर्मूर्त पहले यानी आयु बंध के भी थोड़ा पहले उसको सम्यक्त्व प्राप्त कराना। तो सम्यक दर्शन होते ही वहाँ क्या होगा, तीन टुकड़े, परंतु उपशमित है। गुणित कर्मांशिक वाला है, मिथ्यात्व का भी बहुत सारा अधिक माल है ही उसके पास, गुणित कर्मांश लिया है, तो अभी उसके मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तैयार हुई। अब यहाँ जो तैयार होगी तो उसमें गुण संक्रमण का काल भी बढ़ा लेना और उत्कृष्ट संक्रमण कराना। और यहाँ उदय का कोई सवाल ही नहीं, उपशम का काल चल रहा है। उपशम के काल होते हुए हर समय गुण संक्रमण गुण संक्रमण गुण संक्रमण चलता रहता है एक अंतर्मूर्त तक, फिर भी उपशमित ही रहते हैं, उदय तो होता ही नहीं है, तीनों में से किसी का नहीं है, तो हमें सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य उसके प्राप्त होगा गुण संक्रम के अंतिम समय में उपशम काल में, क्योंकि बाद में भी उपशम काल चल ही रहा है उसका, तो उसको सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य अधिक से अधिक प्राप्त होगा।
तो यह तीन करण के लिए जो अंतर्मूर्त है वो बड़ा वाला लेना पड़ेगा?
तीन करण में नहीं लेना है, गुण संक्रमण तो उपशम सम्यक तो प्राप्त होने के बाद होता है।
नहीं, पर वो काल बड़ा होगा,
वो बाल होगा तो मिथ्यात्व का संक्रमण मिथ्यात्व का निर्जरा ज्यादा हो जाएगी। वहाँ बढ़ाना नहीं है, मिथ्यात्व का द्रव्य रखो ना, गुणित कर्मांश वाले को लिया, जब मिथ्यात्व की हमने उत्कृष्ट देखी थी तो उसको सम्यक तो प्राप्ति नहीं कराया था। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट किसके होता है? मिथ्या दृष्टि को ही लेना, सम्यक तो प्राप्त होगा तो उसका उतना गुण गुण श्रेणी हो जाएगी। अब यहाँ हमें गुण श्रेणी ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व का द्रव्य कम करेंगे तो सम्यक मिथ्यात्व का भी क्रम कम होगा, उसी प्रोपोर्शन में उसका संक्रमण होगा, भागार होगा और वो मूल संख्या ही कम होगी, तो हमें तो कोई लाभ नहीं है वहां पर। ये वाक्य में फिर पढ़ती हूँ, सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? सातवें नरक के जिस नारकी के अंतर्मूर्त के बाद मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होगा, हो सकता है, वह विपरीत जाकर यानी उल्टे हम नीचे आना है थोड़ा, सम्यक्त को प्राप्त कर। अभी सम्यक्त्व को प्राप्त किया, औपशमिक सम्यक्त्व को उसने प्राप्त किया गुण संक्रम के उत्कृष्ट काल के द्वारा। गुण संक्रम का काल भी छोटा बहुत बड़ा हो सकता है,
अंतर का वाला, अंतर वाला
अंतर्मूर्त, पूरा अंतर नहीं, जितना अंतर है उसमें छोटा अंतर्मूर्त तक गुण संक्रमण होता है, बाद में विद्यात संक्रमण होता है, तो गुण संक्रम का काल बढ़ा लेना ताकि अधिक द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व तो रूप से संक्रमित हो जाए। सम्यक्त को प्राप्त कर गुण संक्रम के द्वारा उत्कृष्ट काल के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व का संचय कर। अब दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियों में से एक का उदय होगा, किंतु ऐसा न होकर स्थित हुए, हमेशा क्या होता है किसी न किसी का तो उदय होगा, परंतु हमें तो यहाँ उपशम सम्यक्त्व लेना है, उपशम सम्यक दृष्टि के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। ये ख्याल में आई बात, जो मिथ्यात्व का करने वाला था उसको अंतर्मूर्त पहले ही सम्यक तो प्राप्त कराना है, और गुण संक्रम के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य तैयार होगा, तो ऐसे उपशम सम्यक दृष्टि के उत्कृष्ट प्रदेश संचय है। किसका? सम्यक मिथ्यात्व का।
सो गुण संक्रम का अंतिम समय पकड़ सकते हैं,
गुण संक्रम के बाद भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसका तो कुछ द्रव्य नष्ट होने वाला ही नहीं है, उल्टा विद्या संक्रमण से और थोड़ा उसमें आ जाएगा। अब सम्यक्त की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होगी?
सपना करने वाले को जो अंतर्मूर्त पहले जाते हैं।
तो जो गुणित कर्मांश वाला जीव सातवीं पृथ्वी से निकलकर तिर्यंच के संख्यात भवों में भ्रमण करके मनुष्य हुआ और सबसे लघु काल के द्वारा दर्शन मोह के क्षपण का आरंभ करके कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि होकर सम्यक प्रकृति की अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति शेष रहने पर नरकायु के बंध के वश से नारकियों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसने पहले ही नरकायु बांधी थी और बाद में वो सम्यक दृष्टि हुआ और बाद में क्षपणा की। उसके उत्पन्न होने के पहले समय में सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, यानी कृतकृत्य वेदक रूप से उत्पन्न हुआ है, परंतु कोई भी कृतकृत्य वेदक नहीं लेना, गुणित कर्मांश वाला लेना। उसके बाद तिर्यंचों के कुछ भव किए उसने, कुछ भव क्यों किए, गुणित कर्मांश में उसके अंत की ओर के भव लेने हैं हम, इसलिए उसके बाद तिर्यंचों के कुछ किए, संगी पंचेंद्रिय और फिर बाद में एकेंद्रिय में भी जा सकता है ना, वहां से निकल कर मनुष्य हुआ और क्षपणा की।
क्या तिर्यंच में से भी मनुष्य में ला सकते हैं ना?
तिर्यंच में ही से लाना है, एकेंद्रीय भी तिर्यंच ही होगा ना,
पर संगी पंचेंद्रिय से भी,
अब कहीं से भी लाओ। ये हो गया, यानी कृतकृत्य वेद कौन सा हो, ये गुणित कर्मांश वाला लेना था। तो क्षपणा में क्या होता है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का सारा द्रव्य सम्यक प्रकृति रूप से हो जाता है। अब उसके भी 8 वर्ष की स्थिति घटते घटते थे, पूरे अंतर्मूर्त में सब उसके मैक्सिमम माल उसी में है, ऐसा जीव अभी नरक में आया है, तो नारकियों के लिए सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट किसके होगा? उसी के होगा। हमें ऐसा लगता है कि उसके तो बहुत सारी क्षपणा हो गई ना, उसका कम होगा, ऐसा नहीं है। अन्य जो मिथ्या दृष्टि से सम्यक हुए या सादी मिथ्या, कोई भी जो जीव लो, उनकी अपेक्षा से यहाँ ज्यादा है। तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? नारकियों की बात चल रही है। ओघ में तो हमने वो सारे ईशान वाले को लिया, संख्यात वर्षायुष के लिए, और फिर पुरुष वेद के लिए क्षपणा वाला
लिया। पुरुष वेद के कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि तीनों वेद की उत्कृष्ट,
अभी नारकियों में तीनों वेदों की उत्कृष्ट बता रहे आदेश से। जो गुणित कर्मांश वाला जीव वेदों का उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके नारकियों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में, उत्पन्न होने के प्रथम समय में लिया, अन्य अन्य के लिए अंतिम समय में लेते हैं। मिथ्या तो 12 कक्षा या 16 कक्षा के लिए अंत समय लिया था, अब यहाँ उत्पन्न होने के पहले समय वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। इसी प्रकार सातवें नरक में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है, अभी सातवें नरक के लिए सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट तो वो नहीं होगा, कृतकृत्य वेदक वाला, सम्यक तो प्रकृति का उत्कृष्ट स्वामित्व सम्यक मिथ्यात्व के साथ कहना चाहिए। अर्थात जिस तरह से जिस जीव के नरक में सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है, उसी प्रकार उसी जीव के सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट स्वामित्व हुआ है सातवें नरक में कहना चाहिए। बात ख्याल में आई, क्या कहना चाहते हैं?
यहाँ पे ये दूसरे से छठे नरक पे भी अंत में जाके सम्यक तो प्राप्त कराना है, और अपसम्यक के काल में ही उसका उत्कृष्ट प्रदेश होगा ना, सम्यक तो और सम्यक मिथ्यात्व का।
हाँ, सभी नरकों में तो
अंत में जाके उसको
अंत में जाके अपने अपने नरक के लिए बात करनी है तो,
क्योंकि दूसरे
पर यहाँ नरक में इन जनरल बात करते हैं, तो पहले नरक में कृतकृत्य वेदक के पहले समय में, और अन्य सामान्य नारकियों की अपेक्षा सातवें नरक में उत्कृष्ट होता है, वो अंत अंत की ओर, एक अंतर्मूर्त पहले सम्यक तो प्राप्त किया है,
नरक में अंत में
जाते हैं। उन नरकों के लिए बात करनी है, तो ऐसा ही जो सातवें में गुणित कर्मांश किया फिर चला और फिर नरक में आया, ऐसा जीव ले सकते हैं। ये नीचे बात बता रहे हैं, देखो पहले से लेकर छठे नरक तक मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? जो गुणित कर्मांश वाला जीव सातवें नरक से निकलकर संख्यात भव तीर्यंच के धारण करके फिर अपने योग्य नरक में उत्पन्न हुआ, उसके नरक में उत्पन्न होने के प्रथम समय में, अंतिम नहीं, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? वही जीव अंतर्मूर्त काल के द्वारा सम्यक्त को प्राप्त करके फिर पूर्ण करने के सबसे उत्कृष्ट काल में सबसे जघन्य गुण संक्रमण भागहार के द्वारा भागहार जघन्य लिया, तो गुण संक्रमित द्रव्य ज्यादा होगा, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व को प्रदेशों से पूर दे यानी संक्रमित करे। उसके बाद तीनों प्रकृतियों में से किसी एक का उदय होगा, इस प्रकार उस उपशम समय दृष्टि के, देखो होगा या नहीं अंतिम समय लेना, आगे भी जो बात दी थी ना, तीनों प्रकृतियों में से एक का उदय होगा किंतु ऐसा न होकर स्थित हुए, यानी उपशम सम्यक्त्व का अंतिम समय लिया, हाँ यानी अभी नेक्स्ट समय में उदय होने वाला है, ऐसा जीव ले।
यहाँ पे ये आयु का बंद के पहले उसको सम्यक्त्व प्राप्त कराना पड़ेगा ना?
हाँ, आयु बंद के पहले सम्यक्त्व प्राप्त कराया है, परंतु यहाँ पहले से छठे नरक तक अलग बात है।
नहीं, वहाँ पे भी सम्यक्त्व प्राप्त तो आयु बंद के पहले ही होगा ना, अंतर्मूल पहले जो आयु बंद करेगा।
नहीं, यहाँ सम्यक्त्व प्राप्त कराना है उस नरक में उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त काल के पश्चात, क्योंकि सातवें नरक का गुणित कर्मांशिक जीव दो चार वो तीर्यंच में करके पहले से छठवें नरक में यथाज्ञ कहीं भी उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त में ही वो, क्योंकि आगे चला जाएगा
तो
उसके मिथ्यात्व का द्रव्य उतना चला भी जाएगा, ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि वो पहले ही गुणित कर्मांशिक रूप से होकर आया है, ऐसा जीव लिया है, इसलिए उसको अर्लीएस्ट सम्यक तो प्राप्त किया है। उसके बाद लिखा ना, उसके बाद उदय होगा, ऐसा उपशम समय दृष्टि के अंतिम समय में। ये सम्यक दृष्टि के बराबर करना, सम्यक दृष्ट के हुआ है ना, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। तीनों वेदों का उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामित्व सामान्य नारकियों की तरह होता है, क्योंकि वेदों में तो हमने उत्पन्न होने के पहले समय में लिया था। पहले नरक में सम्यक प्रकृति का भी उत्कृष्ट स्वामित्व सामान्य नारकियों की तरह होता है। कृतकृत्य वेदक का पहला समय। अब आदेश से तिर्यंचों में देख रहे हैं। तिर्यंचों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 6 9 कषाय की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, ये तो आसान है ना। अब ये सातवें नरक से जो निकला है, तिर्यंच में आया है, उसको लेंगे। जो गुणित कर्मांश वाला नारकी सातवें नरक से निकलकर तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? जो गुणित कर्मांश वाला जीव सातवें नरक से निकलकर तिर्यंच के संख्यात भव ग्रहण करके, क्योंकि उसी भव में तो होता नहीं है, जल्दी से जल्दी सम्यक्त्व को प्राप्त करे और सबसे उत्कृष्ट पूर्ण काल के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व को प्रदेशों से पूर दे, यानी गुण संक्रमण का काल बड़ा होगा, अंतर्मूर्त। उपशम सम्यक्त्व के अंतिम समय में वर्तमान उस जीव के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। ये तिर्यंचों में जो नरक में से निकला है, तिर्यंचों के कुछ भव धारण किए और अर्लीएस्ट सम्यक्त्व प्राप्त किया।
ये तो कुछ नहीं, एक दूसरा भव में भी हो सकता है,
नरक से निकलकर उसी भव में नहीं होता
ना, पर दूसरे भव में हो सकता है।
फिर भी हर एक जगह उन्होंने संख्यात भव लिखने का प्रयोजन कुछ होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है ना कि बीच में अभी त्रस की स्थिति पूरी होने को आई थी, तो उसको एक केंद्र में भेजकर फिर वापस लाया होगा। अभी यहाँ संख्यात भव लिखे ना, हाँ दो तीन भी हो सकते हैं ना, तो हो सकता है उसके एक इंद्रियों के कुछ भव हो गए।
संख्या तो दो भी ले सकते हैं ना,
दो भी ले लो आप जितना चाहे। ये तो सम्यक मिथ्यात्व की बात हो गई। सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट स्वामित्व नारकियों के समान जानना चाहिए। यानी वो तो क्षपणा करने वाला कृतकृत्य वेदक वाला लेना। स्त्री वेद का उत्कृष्ट स्वामित्व ओघ की तरह है। ओघ की तरह ने कौन सा?
असंख्यात
वर्षायुष वाले में उत्पन्न हुआ है। हाँ, उसके अंत में। पुरुष वेद और नपुसक वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? जो गुणित कर्मांश वाला जीव दोनों वेदों को प्रदेशों से पूर कर तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में जानना चाहिए। योनिनी तिर्यंचों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष इतना है कि सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट स्वामित्व सम्यक मिथ्यात्व के समान होता है। सम्यक तो प्राप्त होता है तो गुण संक्रम के द्वारा जो प्रदेश तैयार होगा उसके, जैसे हमने सातवें नरक में देखा था। पंचेन्द्रियं च पर्याप्तो में मिथ्यात्व सोलह कषाय और छह नौ कषाय की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? जो गुणित कर्मांश वाला जीव सातवें नरक से निकलकर तिर्यंचों के संख्यात भव धारण करके फिर पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म भी इसी प्रकार जानना चाहिए, अर्थात गुणित कर्मांश वाला जीव तिर्यंच के संख्यात भव बिताकर सबसे लघु काल के द्वारा सम्यक्त को प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में जाकर नाश को नहीं प्राप्त हुई गुणी श्रेणियों के साथ पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों में उत्पन्न हुआ।
कावली में ही वो
गुण श्रेणी अंतर्मूर्त की होती है,
नहीं पर वो आवली के पश्चात होती है ना।
गुण श्रेणी उपशम काल में नहीं होता है, वो करण लब्धि में शुरू हुई थी। देखो क्या कह रहे, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म भी इसी प्रकार जानना चाहिए। सम्यक को प्राप्त किया, गुण श्रेणियां तो उसकी चलेगी ना, उसके वो
तो
उपशमित है। एक मिनट, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का इसी प्रकार जानना चाहिए। गुणित कर्मांश वाला जीव तिर्यंच के संख्यात भव बिताकर सबसे लघु काल के द्वारा सम्यक्त को प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में जाकर नाश को नहीं प्राप्त हुई गुण श्रेणियों के साथ
ये गुणश्रेणी तो प्रथम स्थिति पे होती है ना।
ये गुण श्रेणी के बदले ऊपर क्या लिखा है? सवलहुन सम्मतम परिवज्य पुनो मिच्छन्तम गंतुण अविनठ गुण श्रेणी ही पंचिन्य तीर्थ अपजतेसु ओवन्नो तस्स परम उव सम परम समय उवन्नस उक्कस पदेश व्यक्ति। अन्य प्रकृतियों की गुण श्रेणी लेनी चाहिए फिर। क्योंकि अंतर में तो उसकी गुण श्रेणी तो अंतर के ऊपर होती है, जब तक उपशम सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है तब तक तो उसके सम्यक सम्यक मिथ्या तो तैयार ही नहीं होता है। हाँ, तो उसने गुण संक्रमण किया है वहां पर, उसी को गुण श्रेणी कहा। क्या कहा? गुण संक्रमण में जो कुछ हुआ था
वहाँ पे गुण श्रेणी के
गुण श्रेणी नहीं कहते उसको, गुण संक्रमण कहते हैं। तो गुण संक्रमण से उसने वो उसमें संक्रमित कर दिया, अब उपशम सम्यक्त का काल पूरा हुआ। पूरा होने पर
अभी शासादन में लाओ और मरण,
शासादन में लाओ मरण हुए
और
तो भी अपर्याप्तों में ले जाना है ना, अपर्याप्तों में शासादन वाले उत्पन्न नहीं होते, शासादन वाले अपर्याप्तों में नहीं जाते। तो वहाँ उनको ये जो संक्रमित द्रव्य है मिथ्यात्व में लाना है उस जीव को, और उसका उल्टा संक्रमण नहीं कराना, उद्वेलना नहीं करानी, ऐसा हाँ। ले सकते
एक भी स्थिति कांड हुए बिना वो जो जहाँ पे उत्पन्न हुआ है,
स्थिति कांड उद्वेलना हुए बिना,
क्योंकि पहला कांडक बड़ा होता है नहीं
वो उद्वेलना की बात, आप तो स्थिति कांडक घात की बात कर रहे हैं, हम सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना की बात कर रहे हैं।
सॉरी, उद्वेलना की अपेक्षा जो कांडक होता है
हाँ, मगर उसके उद्वेलना भी अंतर्मूर्त के बाद शुरू हो जाती है, उसके पहले वो मरकर जा सकता है ऐसा जीव लिया। मैंने उद्वेलना बिना हम कह सकते हैं, परंतु गुण श्रेणियां वहां नहीं रहेंगी उसकी।
उद्वेलना का एक भी कांडक नहीं और वो अपर्याप्त में उत्पन्न हो गया,
ऐसा ले सकते। तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? तिरियंचों की बात चल रही, जो तीनों वेदों का उत्कृष्ट। हाँ? देखो ये क्या कहना चाहते हैं, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म किसको होना चाहिए? तो इसी प्रकार जानना चाहिए जैसे हमने अन्यत्र देखा था, ये अपर्याप्त जीव है, तो यहाँ तो वो तो क्षायिक वाला उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए उसकी बात नहीं लेनी है। तो उसको सम्यक तो उत्पन्न कराना चाहिए तिर्यंचों में, तो सम्यक तो उत्पन्न होकर उसके बाद उसका जो गुणित प्रमाण में संक्रमण हुआ है, सम्यक मिथ्यात्व के भी और सम्यक्त्व के भी परमाणु मैक्सिमम है, ऐसा जो मिथ्यात्व में आया है, आने के बाद बहुत काल बीत जाए तो उसकी उद्वेलना चालू होती है और उसके परमाणु मिथ्यात्व रूप से संक्रमित होते हैं, तो उसको ऐसा किए बिना वो तिर्यंच पर्याप्त में आया है, ऐसे जीव के उत्कृष्ट स्वामित्व होगा।
यहाँ पे ऐसे बताया गुणित कर्मांशिक वाला जीव तिर्यंच के संख्यात को बिता कर,
हाँ।
तो क्या ये मनुष्य में लाके क्या है? नहीं, तिर्यंच के संख्यात
हमेशा ही कर, हमेशा ही जो सातवें नरक से निकले हुए जीव को तिर्यंच के संख्यात भाव बताए हैं सर्वत्र,
और पीछे तिर्यंच में उत्पन्न कराया अंतर
तिर्यंच में ही उसको सम्यक तो कहीं भी हो सकता है ना, उसको तिर्यंच के बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, जा भी सकता है, तो मनुष्यों में उत्पन्न करा के फिर वापस लाना पड़ेगा,
तो ये समूर्छन में उत्पन्न कराना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे अंतर्मुहूर्त में उसको सम्यक तो प्राप्त,
समूर्छन में औपशमिक सम्यक तो प्राप्त नहीं होता। फिर भी अन्य तिर्यंचों में ले सकते ना, जहाँ
दो तीन महीने में,
हाँ उसका तो काल कम है, वहाँ का गर्भजों का काल कम है। अच्छा प्रश्न पूछते तो अपनी क्लैरिटी होती है, क्यों? तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? जो तीनों वेदों का उत्कृष्ट संचय करके, हमने देखा ना कैसा करता है उत्कृष्ट संचय करके, जल्दी से जल्दी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्तकों में जानना चाहिए, जो बातें तिर्यंच पर्याप्तों के लिए वही मनुष्य पर्याप्तकों में होंगी।
ये पुरुष वेद के तो हमने उत्कृष्ट विभक्ति तो सपना में देखी थी,
नहीं वो सपना वाला नहीं, संचय करके आया हुआ जीव ऐसा लेना, हाँ।
तो संचय ज्यादा से ज्यादा कहाँ
जो तो हमने देखा था ना कि सम्यक तो प्राप्त किया देव में गया, फिर वहाँ से लाना, फिर मिथ्यात्व में आया, फिर यहाँ आया,
हाँ, देव में ज्यादा काल बिताना पड़ेगा नहीं, जो
नहीं पहले गुणित कर्मांशिक रूप से लेना था उसको, बाद में वो ईशान में गया, नपुसक वेद को पूर्ण किया,
हाँ।
असंख्यात वर्षायुष वाले में तिर्यंचों में गया, फिर स्वधर्म में गया, पुरुष वेद को लिया,
हाँ।
अब ऐसा जीव अर्लीस्ट यानी मिथ्यात्व में जाएगा, अपर्याप्त भव जब बांधेगा वहां चला जाएगा, उसकी बात नहीं। सामान्य मनुष्यों में मिथ्यात्व 12 कषाय 6-9 कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान होती है।
गुणित कर्मांशिक वाला जब मनुष्य के पहले समय में,
हाँ, इतना विशेष है कि पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त के स्थान में मनुष्यों में उत्पन्न हुआ ऐसा कहना चाहिए। देखो 12 कषाय और 6-9 कषाय लिए, संजवलन को नहीं लिया, मिथ्यात्व को लिया है, तो कौन सा लेना? वो सातवें नरक से निकल कर अर्लीस्ट मनुष्य में आए हुआ जीव लेना चाहिए। तो सातवें नरक से निकल कर तिर्यंच के 4-5 भव जो कोई संख्यात भव किए और मनुष्य में उत्पन्न हुआ है, तो उसका पहला समय ले लेंगे हम। अब यहाँ पर सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, चार संज्वलन कषाय और पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति ओग की तरह जानना चाहिए। सम्यक्त्व का सपना
उसके पश्चात सम्यक्त्व प्राप्त करके उसकी सपना चालू कर देता है। और ये तो शपक श्रेणी में हो गया।
तो चार संज्वलन कषाय हमने देखे शपक श्रेणी में, पुरुष वेद को भी वहाँ पर लिया। स्त्री वेद और नपुसक वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है?
मनुष्य में उत्पन्न कर रहा है।
जो स्त्री वेद और नपुसक वेद का उत्कृष्ट संचय करके मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियों के जानना चाहिए। अब देवों में मिथ्यात्व, 16 कषाय और 6-9 कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? जो गुणित कर्मांश वाला जीव नीचे 7वें नरक से निकलकर और तिर्यंच के संख्यात भव धारण करके देवों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? वही देवों में उत्पन्न हुआ जीव जब सम्यक्त्व को प्राप्त करके अंतर्मूर्त पर्यंत सबसे उत्कृष्ट पूरण काल के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व को प्रदेशों से पूर देता है, उसके बाद दर्शनमुखी तीनों प्रकृतियों में से किसी एक प्रकृति के उदय को प्राप्त होगा, यानी अंतिम समयवर्ती उपशम समय दृष्टि। जिसने पहले गुण संक्रमण को लंबे से काल के द्वारा किया है उसके उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। सम्यक्त प्रकृति का भंग नारकियों की तरह जानना चाहिए।
कौन वासी में नहीं होगा,
यानी वो कृतकृत्य वेदक वाला लेना ना।
और भवनवासी में जो
भवनवासी में तो नहीं लेना इसको,
वहाँ पे जो सम्यक्त्व प्राप्त
सम्यक्त्व प्राप्त करेगा उसको। स्त्री वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? जो स्त्री वेद को पूर कर देवों में उत्पन्न हुआ, हमने देखा था ना असंख्यात वर्षायुष वाला, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति ओघ की तरह जानना चाहिए। इतना विशेष है, पल्ल्य की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय करने वाले देव के अंतिम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। नपुसक वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति ओघ की तरह है, जो ईशान में हमने देखी। इसी प्रकार भवनवासी वेंतर और ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति सम्यक मिथ्यात्व की तरह जानना चाहिए, यानी वहां जाने पर सम्यक तो प्राप्त करेगा उसको होगा, क्योंकि वहां कृतकृत्य वेदक वाले तो उत्पन्न नहीं होते।
ये भवनवासी वेंतर और ज्योतिष में नपुसक वेद को तो जो पृथ्वी का एक में उत्पन्न होने वाले को अंत में जाके जो असंख्यात वर्ष के आयुष वाला है, ईशान स्वर्ग में हमने लिया था,
जैसे ईशान में लिया उसके बदले भवनवासी में लिया, बात तो वही होगी ना
अंतिम समय में।
हाँ, वो भी स्थावर की स्थावर का बंध करता है। तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? जो गुणित कर्मांश के क्रमानुसार तीनों वेदों का उत्कृष्ट संचय करके अपने अपने देवों में उत्पन्न हुआ, उसके प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों में सामान्य देवों की तरह जानना चाहिए। सनत कुमार से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यंत भी सामान्य देवों की तरह जानना चाहिए। इतना विशेष है कि तीनों वेदों का भंग भवनवासियों की तरह होता है।
यहाँ पे तो नपुंसक वेद का तो पहले समय में हो जाएगा ना,
प्रथम समय में।
हाँ।
तीनों का प्रथम समय में ही लिया।
पुरुष वेद और स्त्री वेद का भी प्रथम समय में लेना पड़ेगा।
देखो ऊपर लिखा है ना भवनवासी के लिए, ऊपर से
संख्या वर्ष
चौथी लाइन तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, भवनवासी के लिए पूछा था। तो जो गुणित कर्म उसके क्रमानुसार तीनों वेदों का उत्कृष्ट संचय करके, यानी पहले ईशान में गया था, फिर असंख्यात वर्षायुष्क में आया है, फिर सम्यक तो प्राप्त करके वहाँ पुरुष वेद का उत्कृष्ट किया, फिर नीचे आएगा, फिर भवनवासी में जाएगा, ऐसा जीव लिया है। बीच में मिथ्या तो कोई भी चला जाएगा।
पर यहाँ पे तो असंख्यात वर्ष के आयुष्क सीधा यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है, तो वो भी जीव ले सकते हैं।
परंतु वो पुरुष वेद का उत्कृष्ट नहीं हुआ है ना उसके।
पुरुष वेद का नहीं, स्त्री वेद का तो हो जाएगा।
अकेले अलग अलग लेना है तो हो सकेगा। अब आनंद से लेकर नव ग्रह वेग पर्यंत मिथ्यात्व 16 कषाय और 6 9 कषाय की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है। जो गुणित कर्मांश वाला जीव सातवें नरक से निकलकर तिर्यंच के संख्यात भव धारण करके फिर वर्ष पृथक्व की आयु लेकर कम आयु बिताना है ना मनुष्य में, मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, सबसे जघन्य काल के द्वारा द्रव्य लिंगों को धारण करके अंतर्मूर्त काल तक ठहर कर फिर मरण करके अपने अपने देवों में उत्पन्न हुआ। देखो 8 वर्ष की आयु में उसने द्रव्य लिंग धारण किया, अंतर्मूर्त मर के ग्रहवेग में चला गया। उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है। इन्हीं जीवों में से जो अंतर्मूर्त में सम्यक्त को प्राप्त करके सबसे उत्कृष्ट पूर्ण काल के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को प्रदेशों से पूर देता है। तीनों प्रकृतियों में से किसी एक के उदय में आने के पूर्व अवशिष्ट अंतिम समय में स्थित उस जीव के सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। ये तो अन्यत्र भी सम्यक मिथ्यात्व का तो सब जगह ऐसा ही लेना है। हाँ, ग्रहवेग में जाने पर सम्यक तो प्राप्त किया
और पूर्ण काल के अंतिम समय में उसका,
हाँ, पहले गुण संक्रमण किया
लंबे में
और फिर उपशम सम्यक्त्व का अंतिम समय लिया, पूर्ण काल का अंतिम समय नहीं लिया। सम्यक्त्व प्रकृति का भंग सानत कुमार स्वर्ग की तरह होता है। इसी प्रकार तीनों वेदों का जानना चाहिए, किंतु द्रव्यलिंगी के कहना चाहिए, यानी द्रव्यलिंगी होकर यहाँ आना चाहिए। अर्थात उक्त प्रकार से जो द्रव्यलिंगी मरकर आनतादिक में उत्पन्न हुआ उसके उक्त विधि के द्वारा वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय, ये कप्पाय हुआ 16 कषाय और 6-9 कषायों की यह सम्यक मिथ्यात्व को भी इसी में लिया, क्योंकि यहाँ आने पर सम्यक तो प्राप्त नहीं कराना है।
उसके पहले
किसके होती है। जो गुणित कर्मांश वाला जीव नीचे की सातवीं पृथ्वी से निकलकर और तिर्यंचों के संख्यात भव तक जीवित रहकर पुनः वर्ष पृथत्व की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर अतिशीघ्र काल के द्वारा संयम को प्राप्त होकर अंतर्मूर्त काल के भीतर मरकर अपने अपने देवों में उत्पन्न हुआ, उस देव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। मिथ्यात्व की भी, सम्यक मिथ्यात्व की भी, 16 कषाय की और 6-9 कषाय की। सम्यक प्रकृति को क्यों छोड़ा,
वो तो
कृतकृत्य वेदक वाले को लेंगे। सम्यक तो प्रकृति का भंग सामान्य देवों के समान है। तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है। जो कर्मांश को पूर कर और मनुष्यों में उत्पन्न होकर अतिशीघ्र संयम को प्राप्त करके अंतर्मूर्त के भीतर मरकर अपने अपने देवों में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के प्रथम समय में उसके तीन वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। इस प्रकार जानकर अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। अभी इसी का यहाँ विशेषार्थ बता रहे हैं। यहाँ एक साथ क्रम से चारों गतियों में उत्कृष्ट स्वामित्व का खुलासा करते हैं। यथा ओघ में बताया कि जो जीव गुणित कर्मांश की विधि से आकर कर्मस्थिति काल के भीतर अंतिम बार 33 सागर की आयु लेकर सातवें नरक में उत्पन्न हुआ है, उस नारकी के भव के अंतिम समय में मिथ्यात और संज्वलन चार के बिना 12 कषाय नहीं मिथ्यात्व सॉरी मिथ्यात्व और संज्वलन चार के बिना 12 कषाय
तो मिथ्यात्व का भी वहाँ पे भी उत्कृष्ट हो जाएगा ना सम्मित
कषाय में केवल संज्वलन चार के बिना वो 12 के लिए लगाना नहीं समझे।
अच्छा मिथ्यात्व और संज्वलन के बिना और
यानी मिथ्यात्व
और 12 कषाय के लिए
और 12 कषाय ऐसा लेना मिथ्यात्व
12 कषाय
और 12 कषाय और 6 कषाय इनकी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। ये तो हमने बहुत बार देखा था। ओग से बतलाई गई यह विधि सामान्य नारकियों के भी बन जाती है, अतः यहाँ भी उक्त कर्मों के स्वामित्व का कथन उक्त प्रकार से किया। यहाँ शेष कर्मों के उत्कृष्ट स्वामित्व के कथन में ओग से कुछ विशेषता है। ओग में चार संज्वलन का तो क्षपक श्रेणी में बताया था, अब नारकियों में तो यही इसी पॉइंट पर बताना होगा। बात यह कि ओग से चार संज्वलन का उत्कृष्ट स्वामित्व क्षपक श्रेणी में प्राप्त होता है और क्षपक श्रेणी नरक में संभव नहीं, इसलिए चारों कषायों का उत्कृष्ट स्वामित्व भी मिथ्यात्वादी प्रकृतियों के समान बतलाया है। यहाँ इतना विशेष जानना कि किसी उच्चारणा में मिथ्यात्वादी प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्वामित्व क्या लिखा है, आयु बंध के पूर्व बतलाया है। ये तो पहले लिखा नहीं था, मैंने इन्फरेंस से बताया, क्योंकि आयुबंध के काल में
इतने
आय से वे ज्यादा है इसलिए उसके पूर्व की बात ली। अतः इस मत के अनुसार यहाँ भी उसी प्रकार समझना, दो मत है ना इसलिए यहाँ बता। ओग से अब ओग और आदेश में क्या डिफरेंस है वो बता रहे। ओग से सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त करने वाले गुणित कर्मांश जीव के बतलाया है, किंतु नरक में क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति का प्रारंभ नहीं होता। अतः यहाँ मूल में जो विधि बतलाई है उस विधि से ही सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म प्राप्त होता है। सातवें नरक के अंत में औक्षमिक सम्यक्त प्राप्त किया, हाँ तो उस गुण संक्रमण किया और उक्षम सम्यक्त के अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होगा। कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि मरकर नरक में उत्पन्न होता है, अतः गुणित कर्मांश जीव को नरक से निकाल कर और तिर्यंचों में भ्रमा कर वर्ष पृथक की आयु के साथ मनुष्यों में उत्पन्न कराना चाहिए और वहां सम्यक प्राप्ति की योग्यता आते ही सम्यक्त को प्राप्त कराकर दर्शन मुनि की क्षपणा का प्रारंभ कराना चाहिए और जिससे ही यह जीव कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि हो, जैसे ही यह जीव कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि हो वैसे ही, जैसे वैसे का अर्थ है उतने काल में, छोटे काल में इसे अतिशीघ्र नरक में उत्पन्न कराना चाहिए, यानी वहीं पर मर कर हो, क्योंकि उतनी आयु लेकर आया है ना। ऐसा कराने से नरक की अपेक्षा सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म प्राप्त होता है। हाँ इतना विशेष जानना, सम्यक प्राप्ति के पूर्व नरकायु का बंध करा देना चाहिए।
या तो ये वर्ष पृथक तो बताए तो 8 वर्ष और अंतर्भूत लेके तो वहाँ पे उसको
मान लेते 9 वर्ष की आयु लेकर आया है, 9 वर्ष की
एक अच्छा अंतर्भूत करने से
तो 6 वर्ष हो गए उसने आयु बांधी ऑलरेडी, 6 वर्ष की आयु उसने आयु बांध ली।
नहीं वर्ष पृथक को मैं सोच रहा था कि 8 वर्ष और अंतर्भूत पकड़े गए तो अंतर्मुक्त हुए वो श्रुत केवली या केवली के सानिध्य में रहा और सपना भी प्रारंभ कर दी।
कर दी ना, सपना तो करेगा परंतु वो करने के पहले सम्यक तो प्राप्त करेगा ना उपशमिक,
तो
फिर वेदक समय दृष्टि भी होगा तो उसने आयु बंध उसके पहले होना चाहिए।
हाँ।
तो 6 वर्ष की आयु में उसने नरक का बंध किया है, 9 वर्ष हमने 9 मान ली है ना,
तो 6 वर्ष पे उसने नरक का बंदी कर दिया।
हाँ। अरे 2 महीने का गर्भ का बालक भी हमने देखा था, सनत कुमार आदि देवों में उत्पन्न होता है गर्भ का बालक।
6 साल का बालक ऐसे कौन सा संकलेश परिणाम करेगा?
हाँ, तो 6 वर्ष का बालक ऐसे कौन से, क्यों वो नहीं कर सकता है ये सारे? हम ये बालक है इसलिए नहीं कर सकता ऐसा लगता है। देखो सम्यक तो प्राप्ति के पूर्व नरकायु का बंध कर देना चाहिए, तीसरी लाइन, क्योंकि सम्यक तो प्राप्ति के बाद नरकायु का बंध नहीं होता। ये तो हमें मालूम है, ऐसे ही है ना सारे रूल्स। स्त्री वेद का उत्कृष्ट संचय असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंच या मनुष्य के होता है, और नपुसक वेद का उत्कृष्ट संचय ईशान स्वर्ग के देव के होता है, और पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय डेढ़ पल्ले की आयु वाले देव के होता है। एक और डेढ़ पल्ले उन्होंने, हाँ यानी वहां की मिनिमम आयु ली है उन्होंने, वहां की मिनिमम आयु ली। इन जीवों को यथासंभव शीघ्र से शीघ्र नरक में ले जाए इसलिए वहां पल्ले के लिए आए। तो वहां उत्पन्न होने के पहले समय में नरक की अपेक्षा उत्कृष्ट संचय प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ डेढ़ पल्ले की आयु वाला है, फिर वो मनुष्य में लाना उसको समय दृष्टि था, फिर मिथ्यात्व में चला जाएगा, नरक की आयु बांधेगा, नरक में चला जाएगा। तो पहले समय में नरक की अपेक्षा उत्कृष्ट संचय प्राप्त हो जाता है।
ये डेढ़ पल्ले लिया है, वो जो 31 सागर वाली आयु में उत्पन्न होगा और वहाँ पे सम्यक तो आप तुरंत प्राप्त कर लेगा और पूरा काल तक वो पुरुष वेद ही बांधेगा, और पीछे मनुष्य में उत्पन्न
पल्ले पल्ले लेना है।
डेढ़ पल्ले यहाँ पे लिया है। हाँ। ये तो मैं दूसरा ऑप्शन पूछ रहा हूँ आपको कि जो 31 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा।
हाँ।
और वहाँ पे पुरुष वेद का ही बंध किया और उसको मनुष्य में लाके उसको शीघ्र मरण करके जहाँ भी उत्पन्न करेगा तो उसका ज्यादा नहीं हो जाए, डेढ़ पल्ले वाले का ज्यादा हो जाएगा?
डेढ़ पल्ले को ही लेना है क्योंकि उसका गुणित कर्मांशिकपना बना रहना चाहिए।
अच्छा, वहाँ पे गुणित कर्मांशिक, पर ये पुरुष वेद का ज्यादा
गुणित, अरे पुरुष वेद को ले तो उसका गुणित कर्मांशपना नहीं रहता ना, उसके वहाँ उतनी निर्जरा भी हो जाएगी कि नहीं जाएगी? हमें अर्लीस्ट ले जाना चाहिए उसको नरक में। और इस प्रकार नरक गति में भोग से सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट संचय का विचार किया। अलग अलग प्रत्येक नरक का विचार करने पर सातवें नरक में सम्यक तो प्रकृति के उत्कृष्ट संचय को छोड़कर और सब क्रम सामान्य नारकियों के समान बन जाता है, इसलिए सातवें नरक में सब प्रकृतियों का उत्कृष्ट संचय सामान्य नारकियों के समान कहा। किंतु कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि जीव सातवें नरक में नहीं उत्पन्न होता, इसलिए सातवें नरक में सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट संचय सम्यक मिथ्यात्व के समान कहा। कौन सा अंतर्मूर्त पहले सम्यक्त को प्राप्त किया वगैरह वगैरह, अर्थात सातवें नरक में सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश संचय का जो स्वामी बतलाया है, वही जीव वही जब सम्यक्त को प्रदेशों से पूर लेता है तो उसके सम्यक्त का उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है। ये सातवें नरक में बात की। प्रथमादि नरकों में उत्कृष्ट संचय को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रकृति के उत्कृष्ट संचय वाले जीव को उस नरक में ले जाना चाहिए। यानी सातवें नरक से निकला, 4-5 भव किए उसने, फिर नरक में गया अपने अपने नरक में। यही कारण है कि प्रथमादि नरकों में सब प्रकृतियों का उत्कृष्ट संचय उत्पन्न होने के पहले समय में कहा है, यानी उत्कृष्ट संचय कब होता है, उत्पन्न होने के पहले समय में। यहाँ इतना विशेष जानना, पहले मिथ्यात्व 16 कषाय और 6-9 कषायों का उत्कृष्ट संचय सातवें नरक में प्राप्त करावे, स्त्री वेद का उत्कृष्ट संचय भोग भूमि में प्राप्त करावे, ये कौन सा कहाँ होता है वो बता दें। पुरुष वेद का उत्कृष्ट संचय डेढ़ पल्ले की आयु वाले देवों में उत्पन्न करावे और नपुंसक वेद का उत्कृष्ट संचय ईशान स्वर्ग में उत्पन्न करावे और पश्चात यथाविधि यानी जहाँ जाना है वैसे उस अनुसार उस नरक में ले जाए जहाँ का उत्कृष्ट संचय ज्ञातव्य हो। किंतु सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संचय प्राप्त करने में कुछ विशेषता है। बात यह कि पहले सातवें नरक में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संचय प्राप्त करावे, बाद में उसे तिरेंचों में भ्रमाता हुआ अतिशीघ्र उस नरक में ले जाए और उत्पन्न होने के अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक्त्व को प्राप्त करा के सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का उत्कृष्ट संचय प्राप्त कर ले। ये बात ख्याल में आई। किंतु पहले नरक में कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि भी उत्पन्न होता है, अतः यहाँ सम्यक्त्व का उत्कृष्ट संचय कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि के कहना चाहिए। अब तिर्यंच गति में उसका विचार करते हैं। गुणित कर्मांश वाले जीव के सातवें नरक में मिथ्यात्व 16 कषाय और 6-9 कषाय का उत्कृष्ट संचय होता है। अब यह जीव तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ तो तिर्यंचों के इनका उत्कृष्ट संचय पाया जाता है, पर यह उत्कृष्ट संचय पहले समय में ही संभव है, अतः तिर्यंच के इन कर्मों का उत्कृष्ट संचय उत्पन्न होने के प्रथम समय में कहा है। इसी प्रकार पुरुष वेद और नपुंसक वेद का उत्कृष्ट संचय भी तिर्यंच के उत्पन्न होने के प्रथम समय में घटित कर लेना चाहिए, यानी जो उसका पूर कर आया है ऐसा जीव लेना। यहाँ स्त्री वेद का उत्कृष्ट संचय ओग के समान कहने का कारण यह है, ओग से भोग भूमि में तिर्यंच या मनुष्य के स्त्री वेद का उत्कृष्ट संचय होता है, यानी वो ऑलरेडी वहाँ
अंतिम समय
तिर्यंच होता है ना, तो उसमें ही लेना। अतः तिर्यंच के स्त्रीवेद का उत्कृष्ट संचय ओग के समान बन जाता है। अब रही सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, सो कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव भी तिर्यंचों में उत्पन्न होता है, अतः ऐसे तिर्यंच के उत्पन्न होने के पहले समय में सम्यक्त्व का उत्कृष्ट संचय कहा तथा सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संचय उस तिर्यंच के होता है जो सातवें नरक में मिथ्यात्व का यथासंभव उत्कृष्ट संचय करके तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, परंतु ऐसा जीव सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त होता। सातवें नरक से निकलकर ऐसा जीव सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त होता, अतः आगे क्या लिए, उसने चाहिए क्योंकि लास्ट वाला न है, अतः और तीन अक्षरों की जगह, अतः उसने तिर्यंच के संख्यात भव ग्रहण किए, और ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ जिस पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करने की योग्यता आ गई। हाँ, एका दो भाव में नहीं होगी, पहले भाव में तो नहीं होती, इसलिए संख्यात भाव कहे। तब उस पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करके सम्यक मिथ्यात्व का
ये शादी मिथ्या दृष्टि होगा तो भी उसको सम्यक तो ये पहले भाव में
शादी मिथ्या दृष्टि होगा तो गुणित कर्म अंशिक नहीं होगा। सम्यक मिथ्यात्व का संचय किया। इस प्रकार तिर्यंच के सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संचय प्राप्त हो जाता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त के उक्त स्वामित्व अविकल बन जाता है, यानी उसमें भी वही बात लागू होती है। इसलिए इनमें सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट संचय के स्वामित्व को सामान्य तिर्यंचों के समान कहा। यह व्यवस्था योनिमति तिर्यंचों के भी बन जाती है, केवल वो कृतकृत्य वेदक वाला नहीं लेना उसमें, परंतु यहाँ सम्यक प्रकृति का अपवाद है। बात यह कि योनिमति तिर्यंचों में कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होता, अतः यहाँ सम्यक्त्व का उत्कृष्ट संचय सम्यक मिथ्यात्व के समान कहा, यानी वहां जाने पर उसने प्राप्त किया। सातवें नरक से निकला हुआ जीव सीधा लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच नहीं हो सकता, किंतु इस पर्याय को प्राप्त करने के लिए ऐसे जीव को तिर्यंच के संख्यात भव लेना पड़ते हैं। ये उसकी मुख्य बात, संख्यात भव की बात। यही कारण है उच्चारणा में सातवें नरक से निकलकर तिर्यंचों के संख्यात भव धारण करने के बाद लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच के उत्पन्न होने के पहले समय में ये लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच के उत्पन्न होने के पहले समय में मिथ्यात्व 16 कषाय और 6 नौकषायों का उत्कृष्ट संचय बतलाया है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संचय प्राप्त करने के लिए अभी यहीं रुकना पड़ेगा ना बीच में, एक वाक्य पूरा कर दें। लब्धि अपर्याप्त पर्याय के पहले पूर्व पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त कराना चाहिए, यानी थोड़े बहुत 3-4 हो जाएंगे फिर सम्यक्त को प्राप्त करेगा, और अतिशीघ्र मिथ्यात्व में ले जाकर गुण श्रेणियों की निर्जरा होने के पहले ही गुणश्रेणियों की निर्जरा ने अन्य कर्मों में
बात सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की चल रही है।
हाँ, परंतु काल बताना है, सभी कर्मों में गुणश्रेणियां बनती हैं, जहाँ मिथ्यात्व में अंतर पड़ा है उस काल में अन्य कर्मों की गुणश्रेणियां चल रही है, यानी उसके शीर्ष के कुछ निषेक आते हैं उसमें उनकी गुणश्रेणियों के, तो जब तक वो गुणश्रेणी इतने पहले इतने काल बताने के लिए गुणश्रेणियों की निर्जरा होने के पहले ही लब्धि अपर्याप्त तिर्यंचों में उत्पन्न करा देना चाहिए। इस प्रकार लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच के उत्पन्न होने के पहले समय में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संचय प्राप्त हो जाता है। यही रुकते अभी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो। अश्विन भाई।